अगली सुबह के 5 बज रहे थे। लगातार आती चूड़ियों की खनखनाहट से शान की आंख खुली, पर अब भी वो पूरी तरह से जागा नहीं था। रात को देर से सोया था तो अब तक नींद नहीं पूरी हुई थी। उसने अपनी अलसाई आंखों को हल्का सा खोलकर देखा तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी आरवी अपने बालों को संवार रही थी। उसके हाथों के हिलने के वजह से चूड़ियों की आवाज मधुर संगीत की तरह फिजाओं में घुलने लगी थी और उसी ने शान की नींद में खलल डाल दी थी। शान की अलसाई निगाहें जैसे ही आरवी के ताजे फूल से खिले चेहरे पर पड़ी, उसकी नींद पूरी तरफ से खुल गई और अधरों पर मुस्कान सज गई। बेड से कोहनी टिकाए और हथेली को गाल पर रखकर वो तिरछा लेटकर कुछ पल बड़े ही प्यार से उसको निहारता रहा। आरवी तो अपने में ही गुम थी। आज बहुत खुश नजर आ रही थी वो। चेहरा एकदम खिला हुआ था, अलग ही नूर बिखरा हुआ था चेहरे पर और आंखों में चंद्रमासी कांति समाहित थी। अधरों पर मोहिनी मुस्कान फैली हुई थी। उसने रात वाली साड़ी ही पहनी हुई थी, पर इस वक्त रात से कई गुना ज्यादा दिलकश लग रही थी वो। शान कुछ पल यूं ही उसको निहारता रहा, फिर आराम से बेड से उतरकर दबे पांव उसके तरफ बढ़ गया। आरवी आज बेहद खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। अपनी खुशी में इतना खोई हुई थी कि उसको शान के करीब आने तक का एहसास नहीं हुआ। जब अचानक उसकी कोरी कमर पर किसी की गर्म हथेली फिसली तो उसने चौंकते हुए निगाहें सामने की तरफ उठाई। शान तब तक उसकी कमर को जकड़ चुका था और अब उसके कंधे पर चिन रखे उसको बड़े ही प्यार से निहार रहा था। स्पर्श से पहचान तो आरवी भी गई थी, और फिर यहां उन दोनों के अलावा भला कौन ही आता। पर वो अचानक शान के छूने से कुछ घबरा गई थी और जब उसने शान को अपने इतने करीब खड़ा देखा तो हैरान रह गई। आप कब उठे? उसके मुंह से हैरानगी से ये चंद शब्द निकले, पर उसके सवाल का जवाब देने के बजाय शान ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए कातिलाना मुस्कान लबों पर सजाते हुए कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? लगता है कल रात जरा जल्दी छोड़ दिया मैंने तुम्हें, थोड़ी देर और परेशान करना चाहिए था। उसकी बातों में शरारत थी जिसे समझते हुए आरवी के गोरे गोरे गालों पर हया की लाली छा गई। पेट पर सरकती शान की उंगलियों का असर था कि उसके सीने में मौजूद दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा था। शर्म से पलकें बोझिल होकर झुकने को आतुर थी, पर अगर अभी शान के आगे कमजोर पड़ती तो वो उसे और ज्यादा परेशान कर देता। बस यही सोचकर उसने खुद को संभाला और अपनी कमर पर सरकती उसकी उंगलियों को पकड़कर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, कितने बड़े बेशर्म हैं आप, सुबह सुबह कैसी बातें लेकर बैठ गए? चलिए हटिए, छोड़िए मुझे, पहले ही आपकी वजह से शरीर थकान से चूर है और परेशान मत करिए मुझे। कोशिश तो आरवी ने खूब की, पर शान ने उसकी कमर को जकड़ा हुआ था। आरवी की बात सुनकर वो मुस्कुराया और उसकी गर्दन को अपने लबों से चूमते हुए बोला, अच्छा इतनी थकान थी तो इतनी सुबह सुबह कैसे जाग गई? आरवी उसकी बाहों में मचल उठी और उससे छूटनी को कसमसाते हुए नाराजगी से मुंह फुलाकर बोली, आपने सोने दिया हो तब तो जागू, सारी रात मेरे ऊपर पड़े रहे, पता भी है कितने भारी हैं आप, मैं तो दब गई थी आपके नीचे। अब भी शरीर दर्द कर रहा है, उठने का जी भी नहीं कर रहा था, वो तो घर पर अंशु मेरे बिना परेशान होगी, इसीलिए जल्दी तैयार हो गई। आप भी जाकर जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाइए, अब आराम में सीधे घर पर जाकर करूंगी। आरवी के शब्द कानों में पड़े तो शान बौं सिकोड़कर उसको घूरते हुए बोला, एक रात में इतनी शिकायतें, तुम तो बहुत नखरेलू हो और आप बहुत शैतान, चलिए अब छोड़िए मुझे और जल्दी से तैयार होइए, हमें घर जाना है। आरवी ने उसी के लहजे में जवाब दिया और आखिरकार खुद को उसकी बाहों के कैद से आजाद करवाने में कामयाब हो गई। पर अगले ही पल शान ने फिर से उसको अपने आलिंगन में भरते हुए कहा, घर जाकर क्या करना है जान, आज यहीं रुकते हैं, एक दूसरे के साथ खूबसूरत यादें मनाते हैं। आरवी ने बहुत सिकोड़कर उसको घूरा और मुंह बनाते हुए बोली, बहुत खूबसूरत यादें बना ली और अभी के लिए इतनी यादें बहुत हैं, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है, चलिए बच्चों जैसी जिद करना छोड़िए और घर चलिए। शान ने अब आरवी को छोड़ दिया, उसे 2 कदम दूर होकर खड़ा हो गया और आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए बोला, क्या बात है तुम्हारे साथ, सॉफ्टली क्या पेश आ रही हूँ, तुम तो बहुत हल्के में लेने लगी मुझे, बच्चा कह रही हो मुझे? उसके इस गुस्से का भी आरवी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपने बालों को संवारते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, अब हरकत बच्चों वाली करेंगे तो वही सुनेंगे, और घूरना बंद करिए मुझे, कोई डरवर नहीं लगता मुझे आपसे। ये सुनते ही शान ने एकाएक उसको अपने करीब खींच लिया और गुस्से से उसको घूरने लगा। आरवी ने उचक्कर उसके लबों को हौले से चूम लिया और मुस्कुराकर बोली, आई लव यू। बस ये 3 शब्द कानों में पड़ने की देर थी और शान का सारा गुस्सा पल में गायब हो गया। उसने भी बदले में उसके लबों को चूम लिया, लव यू टू। इसके गाल उसने कुछ पल ठहरने के बाद आगे कहा, सच में रात को मेरी वजह से सो नहीं सकी? उसके चेहरे पर चिंता के भाव फैले हुए थे उसका सवाल सुनकर आरवी ने मोहिनी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बड़े ही प्यार से उसको निहारते हुए जवाब दिया, जिंदगी में पहली बार इतनी प्यारी और मीठी नींद आई है मुझे कि चंद घंटों में ही आँख खुल गई और उस पर भी एकदम फ्रेश फील कर रही थी। चलिए अब छोड़िए मुझे, सच में घर जाने में देर हो जाएगी। शान ने अब उसको जरा भी परेशान नहीं किया और चुपचाप बेड बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद कल वाले कपड़े पहनकर बाहर आया और आरवी के पास आकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, गाड़ी निकालता हूँ, जल्दी आना। आरवी ने मुस्कुराकर हामी भर दी। शान अपनी उंगलियों से बालों को सेट करते हुए रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के कुछ देर बाद आरवी जाने को पलटी और नजर बेड की तरफ चली गई। पूरे बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई थी जो अब कुछ मुरझा सी गई थी और चादर में सिलवटें पड़ी हुई थी। ये सब देखते हुए आरवी को शान के साथ वो प्यार भरे लम्हे एक बार फिर याद आ गए। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने चादर झाड़कर उसे अच्छे से बिछा दी और रूम से बाहर निकल गई। बाहर लिविंग रूम में पहुंची तो एक सर्वेंट साफ सफाई कर रहा था। आरवी ने उन्हें नमस्ते किया और मुस्कुराकर बाहर चली आई। शान गेट के सामने गाड़ी लगाए उसके टेक लगाए खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आरवी को देखकर उसने मुस्कुराकर उसके तरफ का दरवाजा खोल दिया। आरवी मुस्कुराकर अंदर बैठ गई। दूसरे तरफ से शान अंदर बैठा और जैसे ही कार स्टार्ट करने लगा अचानक ही उसका फोन बज उठा। पैंट की पॉकेट से उसने फोन बाहर निकालकर देखा तो कुछ चौंक गया। उसके चेहरे के भाव देखते हुए आरवी ने सवाल किया, क्या हुआ, किसका फोन है? शान ने निगाहें आरवी की तरफ घुमाई और स्क्रीन उसको दिखाते हुए हैरानगी से बोला, अर्जुन का फोन है, पर इतनी सुबह सुबह ये मुझे क्यों फोन कर रहा है? शान ने अपनी उलझन भी उसको बता दी। आरवी ने उसकी बात सुनी तो उसके कंधे को पकड़कर बोली, देख क्या रहे हैं, उठाइए ना, क्या पता कोई जरूरी बात हो। शान ने सर हिलाया और तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, उसके कहते ही दूसरे तरफ से अर्जुन की खुशी से चहकती हुई आवाज आई, शान आरवी कहाँ है? यही है, मेरे बगल में बैठी है, क्यों क्या हुआ? शान ने बगल में बैठी आरवी को देखते हुए कहा, जो सवालिया निगाहों से उसको देख रही थी। उसकी बात सुनकर दूसरे तरफ से अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, फोन स्पीकर पर कर, एक गुड न्यूज देनी है मुझे तुम दोनों को। शान ने उसके कहे अनुसार फोन स्पीकर पर करते हुए कहा, कर दिया, अब बोल क्या बताना है तुझे हमें? आरवी तू मेरी आवाज सुन रही है? अर्जुन ने जवाब देने की जगह जो सवाल किया उसे सुनकर शान चिढ़ते हुए बोल पड़ा, नहीं, कान में रुई खुसकर बैठी है वो, इसलिए कुछ नहीं सुन सकती।
शान ने जैसे ही अपनी बात पूरी की आरवी ने गुस्से में उसके कंधे पर मुक्का जड़ दिया। शान ने चौंकते हुए उसको देखा, वहीं आरवी ने उसको घूरते हुए ही अर्जुन के सवाल का जवाब दिया, जी भैया मैं सुन रही हूँ। तू बुआ बन गई आरू, एक छोटा सा राजकुमार हमारे घर आया है, दूसरे तरफ से अर्जुन की खुशी से चहकती हुई आवाज आई। उसकी बात सुनकर आरवी का चेहरा भी खुशी से खिल उठा और उसने चहकते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं भैया? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तू बुआ बन गई है। आरवी ये सुनकर इतनी खुश हुई कि चहकते हुए बगल में बैठे शान के गले से लग गई। पर शान खुश नहीं नजर आ रहा था। उसने गंभीर लहजे में सवाल किया, आगे का तुमने क्या सोचा है अर्जुन? फिर कुछ पल ठहरने के बाद बोला, निया को माफ कर दोगे? एक बेचैनी और डर था इस सवाल में। आरवी के कानों में जब उसके शब्द पड़े तो वो उससे अलग हो गई और सवालिया निगाहों से उसको देखने लगी, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं जानती थी। वहीं शान का सवाल सुनकर फोन के दूसरे तरफ मौजूद अर्जुन के चेहरे की मुस्कान भी फीकी पड़ गई। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर गंभीर लहजे में बोला, कुछ गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं होती शान, जो गुनाह उसने किए हैं मैं कभी उसको माफ़ करके वापस अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। वो मेरे घर में थी क्योंकि उसके अंदर मेरा बच्चा था, और अब मुझे मेरा बच्चा मिल गया है तो उसके लिए मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। अब से उसके और मेरे रास्ते अलग अलग होंगे और मैं अपने बच्चे पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। एक बार फिर सोच लो अर्जुन, इतने छोटे बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस दौर से गुजरा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त बच्चे को सबसे ज़्यादा उसकी माँ की ज़रूरत होती है, और बिन माँ के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ तो बड़ी माँ थी, इसीलिए मैंने अंशु को संभाल लिया, पर तुम और अंकल नहीं संभाल पाओगे बच्चे को। शान ने उसे समझाने की कोशिश की, पर अर्जुन अपने इरादे से नहीं पलटा। उसने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं डैड हूँ उसका, संभाल लूँगा अपने बच्चे को, और निया जैसी माँ होने से बेहतर है कि मेरा बेटा बिन माँ के ही पले। अगर आरवी आना चाहे तो तुम उसे लेकर कुछ देर बाद सीधे घर ही आना, बाद में बात करता हूँ मैं तुमसे, बाय। अर्जुन ने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। शान परेशान सा सीट से सर टिकाए आंखें बंद करके बैठ गया। आरवी ने सारी बात सुनी, पर आधी से ज़्यादा बातें तो उसके सर के ऊपर से चली गई। फ़ोन कट चुका था और शान खामोश परेशान सा बैठा था। आरवी कुछ पल खुद भी परेशान सी उसको देखती रही, फिर उसके कंधे को पकड़कर हल्का सा हिलाते हुए बोली, मिस्टर मल्होत्रा क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हो गए? क्या बातें हो रही थी आपके और भैया के बीच, और भाभी ने ऐसा क्या किया है जो भैया अपने छोटे से बच्चे को उनसे दूर करने को तैयार है?